बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। जाते ही बाबा को सभी भाई बहनों की याद दी। याद देने के साथ बाबा को कहा, आज विशेष बड़ी दीदी के निमित्त भोग लेकर के आई हूँ और पुराने भाई बहनों ने भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी है। याद प्यार देते हुए बाबा ने आज वतन में बड़ा ही अद्भुत निराला दृश्य था। बाबा ने एक तराजू दिखाई। एक सेकंड तो मैं सोच में पड़ गई कि बाबा आज वतन में तराजू क्यों दिखा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची, ये देखकर क्या समझ में आ रहा है? तो मैंने कहा, बाबा वह तो इसका राज रहस्य तो आप ही बतलाएंगे। बाबा ने कहा कि बाबा के पास जो बच्चों के, चाहे गीत के माध्यम चाहे याद के माध्यम, दीदी और दादी की जोड़ी, उसके साथ साथ बाबा ने एकदम दीदी को, दादी को, जानकी दादी को, परदादी को, चंदमणि दादी को, कई दादियों को वतन में मम्मा को इमर्ज किया। तो पहले तो बाबा ने कहा कि विशेष दिन होता है, विशेष समय होता है, तो बाबा अपने बच्चों को, अन्य अन्य बच्चों को वतन में इमर्ज कर लेते हैं। फिर बाबा ने जो तराजू का सीन इमर्ज किया, बाबा ने कहा कि बच्ची, आज विशेष बड़ी दीदी के निमित्त भोग लेकर, याद लेकर आई है, तो एक तराजू में किसको रखेंगे, कौन सी बात रखेंगे? तो बाबा के कहने के साथ उस तराजू के ऊपर एक तरफ लिखा हुआ था, परखने की शक्ति, और दूसरे पल्ले पर लिखा हुआ था, निर्णय करने की शक्ति। बाबा ने कहा कि जितनी भी दादियां, जितने भी यज्ञ में बड़े, परखने की शक्ति में नंबर वन दीदी थी, तो दीदी और दादी की जोड़ी सभी कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि पल्ला एक समान होता है, तभी इसको ठीक माना जाता है। तो बड़ी दीदी की विशेषता सुनाते हुए बाबा कहने लगे कि बड़ी दीदी परखने की शक्ति में नंबर वन थी। परखने के बाद कोई चीज का जजमेंट करना, उसका निर्णय करना, उसमें दादी थी। तो बाबा कहने लगे कि इसलिए यज्ञ, बाबा का घर, ये दो शक्तियों के आधार से, दोनों ही दादियां, माना दीदी और दादी, दोनों ही शक्तियों के आधार से ये बाबा का यज्ञ चला है। क्योंकि परखने की शक्ति नहीं होगी तो आगे कोई प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि दीदी और दादी दोनों इसमें नंबर वन थी। फिर जैसे कि एकदम से दीदी के बाजू में दादी भी बैठी हुई थी, जानकी दादी भी बैठी हुई थी और भी दादियां बैठी हुई थी, तो ऐसे लग रहा था कि बहुत समय के बाद सभी दादियों को बाबा ने इमर्ज किया और बहुत प्यार से आपस में एक दूसरे से रू रूहान कर रहे हैं। दीदी कहती हैं कि मैंने तो कितने साल पहले मंत्र दिया अब घर जाना है, पर अभी तक भी अपने घर की मंजिल की तरफ हम सभी पहुंचे नहीं हैं। तो इतने में जानकी दादी कहती है कि आखिर हम लोग कब तक रहेंगे। तो मैंने फिर बीच में बोला, आप दादियां तो हम सभी को छोड़ के चले गए, तो बाबा और दादी, जो दादियां थी, बड़ी मीठी दृष्टि से मुस्कराते कहती हैं कि कलयुग का जो शरीर है और अंत समय में जो दादियों का शरीर का थोड़ा बहुत जो भी हिसाब था पुरानी दुनिया के हिसाब से, तो वो संगम युगी और सतयुगी देवताएं वो सहन नहीं कर सकते। इसलिए समय के अनुसार दादियां गईं और जो साथ में भागे वो तो सभी अपना पाठ बजा रहे हैं। तो आज वतन में बहुत ही सुंदर दृश्य देखने में लग रहा था, सभी दादियां थी और एक दूसरे से बड़ी मीठी मीठी रू रूहान कर रही थी। फिर जैसे बाबा के सन्मुख भोग रखा था तो बाबा ने बड़े प्यार से सभी दादियों को अपने हस्तों से मधुबन का भोग स्वीकार कराया और फिर दादियों ने भी बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि यह भी संगम का दिन बड़ा ही सुंदर और सुहावना है, जो बाबा अपने बच्चों को सूक्ष्म वतन में मिलते हैं और मिलन मनाते हैं। ऐसे कहते आज भी कई आत्माओं की विशेष याद दी, तो बाबा ने भी उन्हें बहुत प्यार से मर्ज किया, भोग स्वीकार कराया और फिर बाबा ने जैसे कि सभी को मर्ज कर दिया और फिर बाबा का याद प्यार सभी आत्मा प्रति लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।
थोड़ा ऊपर।
ओम शांति। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है, गोपी मस्तानी की, वो बहुत ही सुहानी है। दीदी दादी की जोड़ी सबसे ही लासानी है, दो देह मगर एक जान थी, हमने सबकी सुनी जुबानी है। दीदी की बड़ी सुंदर सी सुहानी कहानी है।
प्यारी
बने सेवा का भार, दो कंधों पर डाला था। दीदी दादी ने मिल करके प्यार से संभाला था, प्यार से संभाला था। देह दो एक जान पर सबकी सुनी जुबानी है, गोपी मस्तानी की गाथा वो बड़ी ही सुहानी है। दीदी मन मोहिनी की प्यारी, किया था रासना। पालना देती थी जिगरी पाई जिसने जानी है, गोपी मस्तानी की गाथा वो बड़ी ही सुहानी है। दीदी मन मोहिनी की प्यारी, घर जाना दीदी की बात ये सुहानी है, गोपी मस्तानी की गाथा वो बड़ी ही सुहानी है। दीदी मन मोहिनी की प्यारी, प्यारी सी कहानी है। दीदी मन प्यारी, प्यारी सी कहानी है, गोपी मस्तानी की गाथा वो बड़ी ही सुहानी है। दीदी मन मोहिनी की प्यारी।